पेश हैं आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। लेबर सांसद ने धार्मिक भेदभाव विधेयक के नौजवानों पर पड़ने वाले प्रभाव पर जताई चिंता। दहेज प्रताड़ना कानून के दुरुपयोग पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दी टिप्पणी। और जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड समेत 8 इंग्लैंड के खिलाड़ी नहीं खेलेंगे अगले माह वेस्ट इंडीज के दौरे पर। और अब खबरें विस्तार से। लेबर सांसद स्टीफन जोन्स ने संसद में जारी धार्मिक भेदभाव विधेयक पर बहस में अपने निजी जीवन के किस्से साझा किए हैं। श्री जोन्स ने अपने गे भतीजे के बारे में बताया जिन्होंने अपनी जान ले ली थी। उन्होंने साथ ही अपने बेटे के बारे में भी बताया जो जेंडर फ्लूइड है। श्री जोन्स का कहना है कि ये संसद जिस तरह से धार्मिक भेदभाव विधेयक पर फैसला लेती है वह गे और ट्रांसजेंडर नौजवानों के लिए इस संसद के परिप्रेक्ष्य का संदेश होगा। इस विधेयक पर बहस कल शाम से शुरू हुई थी। श्री जोन्स ने कहा कि गे और ट्रांसजेंडर छात्र लगातार धमकाने और दुर्व्यवहार का शिकार होते रहे हैं क्योंकि वे औरों से अलग हैं। संसद को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे उनका ये उत्पीड़न और बढ़े। उन्होंने संसद से कहा कि उनके लिए ये एक शैक्षिक विषय नहीं है।
He was just 15 when he took his own life. No mother or father should have to endure this sight. No brother should have to clean up afterwards. He was a beautiful, creative, courageous young man. He was loved and accepted by his parents, by his family, by his friends and community. His mum and dad are in anguish. We all are.
इस विधेयक के संशोधन के अनुसार गे और लेस्बियन बच्चों को उनकी लैंगिकता के आधार पर धार्मिक स्कूलों से नहीं निकाला जा सकेगा, लेकिन ट्रांसजेंडर बच्चे अपनी लैंगिक पहचान के लिए निष्कासित किए जा सकते हैं। फेडरल सरकार के अपने नरमपंथी सदस्य सरकार के उस संशोधन के समर्थन में नहीं है जो गे और लेस्बियन बच्चों के अधिकारों का रक्षण तो करता है पर ट्रांसजेंडर बच्चों का नहीं। गठबंधन के पार्टी कक्ष ने कई संशोधनों पर सहमति दर्ज की है। इसमें लैंगिक भेदभाव कानून में एक अनुच्छेद के जोड़े जाने की भी बात है जो धार्मिक संस्थानों को छात्रों को लैंगिकता के आधार पर निष्कासित करने से रोकेगा, पर यह स्कूल लैंगिक विविधता के आधार पर छात्रों में भेदभाव कर सकेंगे। तस्मानिया की लिबरल सांसद ब्रिजिट आर्चर ने चिंता व्यक्त की है कि नए विधेयक LGBTQI+ छात्रों के अधिकारों के रक्षण करने वाले राज्य कानूनों को खारिज कर देंगे।
Nobody should be discriminated against because of their religion, but this bill goes further and beyond protecting somebody's faith. I'm not prepared to stand by and see our state laws eroded to privilege one group over another. It's not okay to be cruel, offensive, or humiliating just because you can say it with conviction or point to a religious text to back it up.
दूसरी ओर रूढ़िवादी सांसद जैसे जॉर्ज क्रिस्टेंसन मानते हैं कि ये विधेयक अभी भी काफी नहीं है। पूर्व लिबरल स्टाफर ब्रिटनी हिगिन्स और बाल यौन शोषण झेल चुकी ग्रेस स्टेम प्रधानमंत्री की संसद में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पर की गई क्षमा याचना का उत्तर देंगी। सुश्री हिगिन्स एक साल पहले 2019 में उनके साथ हुए एक मंत्री के दफ्तर में यौन शोषण को लेकर सार्वजनिक रूप से सामने आई थी। वे और पूर्व ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर ग्रेस स्टेम नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करेंगे। सेक्स डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर केट जेनकिंस द्वारा सुझाए सुधारों को लागू करने के लिए नया कानून अभी संसद में प्रस्तावित नहीं हुआ है। अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई एज्ड केयर कर्मचारियों के लिए वेतन में बढ़ोतरी का समर्थन करते हैं। वे ये भी मानते हैं कि फेडरल सरकार को इस क्षेत्र में फंडिंग बढ़ानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा यूनियन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि 71% लोग मानते हैं कि इस क्षेत्र के औसत वेतन में 25% तक की बढ़त करके इसे $29 प्रति घंटे के करीब कर देना चाहिए। यह रकम मौजूदा समय में $22 प्रति घंटे के करीब है। JSW रिसर्च द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 62% लोग इस क्षेत्र में अधिक फंडिंग का समर्थन करते हैं। ये शोध नतीजे तब आए हैं जब पिछले कुछ महीनों में कोरोना के बढ़ते फैलाव के बीच एज्ड केयर क्षेत्र को स्टाफ की कमी और एकांतवास से जूझना पड़ा है। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे का कहना है कि फरवरी के बाद स्कूलों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के प्रयोग की संभावना बहुत कम है। हालांकि वे ये मानते हैं कि इन जांचों से बच्चों के स्कूल लौटने में भरोसा बढ़ा है। शुक्रवार को हुई घोषणा में कहा गया था कि शिक्षा विभाग फरवरी के अंत तक के लिए 17.5 मिलियन और जांच किटें वितरित करेगा। टीचर्स फेडरेशन न्यू साउथ वेल्स का कहना है कि वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत का आग्रह कर रहे हैं ताकि 4 हफ्ते बाद की रणनीति तय की जा सके। वहीं तस्मानिया में सरकारी स्कूलों में बच्चे वापस लौट रहे हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेताया है कि कोरोना मामलों में अब भी वृद्धि देखी जा सकती है। ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन यूनियन का कहना है कि कई 100 अध्यापकों ने अभी तक अपने टीकाकरण का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। टीकाकरण प्रमाण शिक्षा विभाग का एक अनिवार्य नियम है। एक ऑस्ट्रेलियाई इलेक्ट्रिक कार कंपनी जल्द ही अमेरिका के टेनेसी क्षेत्र में फास्ट चार्जर बनाने के लिए एक उत्पादन व्यवस्था शुरू करेगी। ट्रीटियम कंपनी के मुखिया का कहना है कि उन्हें अमेरिका में बढ़ती मांग को देखकर अपनी वैश्विक नीति में बदलाव करना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि सालाना करीब 30,000 इलेक्ट्रिक परिवहनों के उत्पादन में अमरीकी पुर्जे इस्तेमाल होंगे।
So the benefits are going to ripple to thousands of miles in every direction. And these jobs will multiply in steel mills, small parts suppliers, construction sites, all over the country in the years to come. And it's going to help ensure that America leads the world on electric vehicles. China has been leading that race up to now. But this is about to change.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में सूखे के चलते करीब 13 मिलियन लोग गंभीर भूख की परिस्थिति झेल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि सोमालिया, इथियोपिया और केन्या 1981 के बाद सबसे गंभीर सूखे की मार झेल रहे हैं। बारिश की कमी के चलते इन इलाकों में फसल और मवेशियों की पैदावार प्रभावित हुई है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्रवक्ता टॉमसन फिरी ने कहा कि बड़े मानवीय संकट को टालने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे।
WFP has an appeal out there. We are appealing for $327 million to respond to the immediate needs of 4.5 million people. And help communities become more resilient to extreme climate shocks. To the international community, to donors, to governments, to high net worth individuals, I would like to borrow the village elders' words. Please, don't take too long.
क्लाइमेट इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट पॉलिसी एंड ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी का एक नया शोध दर्शाता है कि कई मल्टीनेशनल कोऑपरेशन अपने वादे के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती करने में विफल रहे हैं। इस रिपोर्ट में आइकिया, गूगल, अमेज़न और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों की निंदा की गई है कि वे अपने कार्बन फुटप्रिंट की सही आंकड़े नहीं बता रहे हैं। संस्थान के निकोल हॉर्न कहते हैं कि कंपनियां अपने आंकड़ों में छेड़छाड़ कर रही हैं। और अब खबरें भारत से। भारत में कोरोना का प्रभाव अब पहले से कम हो गया है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामले 1,00,000 से कम दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71,365 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 170.87 करोड़ टीके की खुराकें दी जा चुकी है। देश में सक्रिय मामले वर्तमान में 8,92,828 हैं, वहीं रिकवरी रेट 96.70 पर टिका हुआ है। भारत में लगभग 5 करोड़ किशोरों को टीके की अपनी पहली खुराक प्राप्त हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की अवधि में 1,72,211 लोग इस खतरनाक बीमारी से देश में ठीक भी हुए हैं। दहेज प्रताड़ना कानून के दुरुपयोग पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामान्य और सबको लपेटे में लेने वाले आरोपों के आधार पर पति के रिश्तेदारों पर कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। दहेज के सामान्य आरोप पति के रिश्तेदारों पर दाग छोड़ते हैं और इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पत्नी द्वारा दहेज उत्पीड़न के सामान्य और सबको लपेटे में लेने वाले आरोपों के आधार पर पति के रिश्तेदारों को मुकदमे से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आरोपी पर एक गंभीर दाग लग सकता है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.45 रुपए और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 72 सेंट रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। अगले माह इंग्लैंड के वेस्ट इंडीज दौरे के लिए जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड समेत 8 खिलाड़ियों को इंग्लैंड के टेस्ट खेमे में जगह नहीं मिली है। एशेज खेलों में 4-0 की करारी हार के बाद ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम अब बड़े बदलावों के लिए कमर कस रही है। ओपनिंग बल्लेबाज रॉरी बर्न्स और हसीब हमीद, तीसरे पायदान पर बल्लेबाजी करने वाले डेविड मलान, स्पिनर डॉम बेस, विकेटकीपर बल्लेबाज जॉर्ज बटलर और सैम बिलिंग्स भी टेस्ट टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। और अंत में एक नजर कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज गर्मी के साथ धूप खिली रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में धूप छांव का मौसम रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहाँ अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में भी बदली छाए रहेगी। यहाँ अधिकतम तापमान 30 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में धूप ही धूप है। यहां अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में भी कल धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और डार्विन में कल तूफान के साथ तेज बारिश की आशंका है। अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छांव का मौसम रहेगा। दिल्ली का अधिकतम तापमान 20 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।